एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो 100 साल से ज्यादा पुराना है, पर डरावने रूप से आज का लगता है। हम बात कर रहे हैं जॉन एम बेरी की किताब द ग्रेट इन्फ्लुएंजा की, 1918 की उस भयानक महामारी की कहानी जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया था।
नमस्ते। और ये सिर्फ एक इतिहास की किताब नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये एक तरह की चेतावनी भी है, कह सकते हैं। ये दिखाती है कि कैसे एक अनदेखा वायरस जब इंसानी गलतियों, डर और झूठ के साथ मिल जाता है तो तबाही कई गुना बढ़ जाती है। ये कहानी है विज्ञान की परीक्षा की, नेताओं के फैसलों की और शायद सबसे बढ़कर सच की ताकत की।
बिल्कुल, ऐसी कहानी जिससे सीखने को बहुत कुछ है, खासकर आज के दौर में। तो चलिए इस जरूरी किताब के पन्नों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 1918 की उस महामारी ने हमें क्या सिखाया जो हम आज भी नहीं भूल सकते।
हाँ, और शुरुआत करते हैं लेखक से, जॉन एम बैरी। ये कोई आम इतिहासकार नहीं है।
हाँ, सुना है इनके बारे में।
इनकी खासियत है विज्ञान, समाज और ताकतवर प्राकृतिक घटनाओं के टकराव पर लिखना। उनकी एक और मशहूर किताब है राइजिंग टाइड, 1927 की मिसिसिपी बाढ़ के बारे में। वे मुश्किल वैज्ञानिक बातों को कहानी की तरह बताने में माहिर हैं, बहुत सहज तरीके से।
हाँ, और ये भी सुना है कि इस किताब के लिए उन्होंने सिर्फ पुराने कागजात ही नहीं खंगाले।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि उस दौर के विज्ञान को समझने के लिए उन्होंने वायरोलॉजिस्ट, डॉक्टरों सबसे बात की।
बिल्कुल, वो इतिहास और विज्ञान के बीच एक पुल बनाते हैं। उनकी नज़र इस बात पर रहती है कि कैसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, कैसे सिस्टम काम करता है या फेल हो जाता है, और इन सब का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। उनका यही नज़रिया इस किताब को खास बनाता है। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कुरेदते हैं कि क्यों हुआ
और उसमें इंसानी फैसलों का कितना बड़ा हाथ था।
एग्जैक्टली, खासकर जब दांव पर लाखों जाने लगी हों।
तो ये किताब द ग्रेट इन्फ्लुएंजा आखिर है किस बारे में? मोटे तौर पर देखें तो ये 1918 की स्पैनिश फ्लू महामारी की कहानी है।
हाँ, जिसने प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी। दुनिया भर में करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
बैरे का एक बड़ा तर्क ये है कि ये महामारी अमरीकी मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़े बदलाव के मोड़ पर आई।
अच्छा, किस तरह का बदलाव?
देखिए, उस समय तक अमेरिका में इलाज ज्यादातर पुराने तौर तरीकों, अंदाजों और मतलब बड़े डॉक्टरों की बातों पर आधारित था,
है ना?
हाँ
हा?
लेकिन एक नई लहर शुरू हो रही थी, सबूतों पर आधारित वैज्ञानिक जांच पड़ताल वाली दवा की, जिसे हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। ये किताब दिखाती है कि कैसे इस अधूरे बदलाव के बीच आई महामारी ने पुरानी व्यवस्था के खोखलेपन और जिसे बैरी मेडिकल अहंकार कहते हैं, उसे उजागर कर दिया।
मेडिकल अहंकार, ये एक दिलचस्प शब्द है।
हाँ,
और दूसरा शायद सबसे परेशान करने वाला तर्क ये है कि नेताओं की नाकामी और सच को दबाने की खतरनाक कोशिशों ने इस त्रासदी को कई ज्यादा भयानक बना दिया।
बिल्कुल, उस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था और जीत के लिए मनोबल बनाए रखना सबसे जरूरी माना गया।
हाँ, जाहिर है।
इसके लिए फ्लू की गंभीरता को जानबूझकर कम बताया गया, खबरें छिपाई गईं। बैरी सवाल उठाते हैं, क्या ये वायरस वाकई इतना घातक था या इंसानी झूठ और डर ने उसे और जानलेवा बना दिया?
ये तो बहुत बड़ा सवाल है।
बहुत बड़ा। ये किताब हमें एक सफर पर ले जाती है, 19वीं सदी के उस मेडिकल दौर से शुरू करके जहां डॉक्टरों को बीमारियों की असली वजह पता ही नहीं होती थी।
अच्छा।
फिर जॉन्स हॉपकिंस और रॉकफेलर इंस्टीट्यूट जैसे नए वैज्ञानिक संस्थानों के बनने तक।
हाँ, ये नाम तो सुने।
फिर हम देखते हैं कि कैसे ये रहस्यमयी वायरस अचानक उभरता है, कैसे ये फौजी कैंपों से निकलकर पूरी दुनिया में फैलता है और कैसे वैज्ञानिक इसे समझने के लिए दशकों तक जूझते रहते हैं।
तो ये एक तरह की जासूसी कहानी भी है। किताब की शुरुआत भी सीधी 1918 से नहीं होती है ना?
नहीं नहीं, बैरी पहले हमें उन वैज्ञानिकों से मिलवाते हैं जिन्हें वो योद्धा कहते हैं, विलियम वेल्च, साइमन फ्लेक्सनर, ऑस्वाल्ड एवरी जैसे लोग।
योद्धा क्यों?
क्योंकि ये वो लोग थे जो अमेरिकन मेडिसिन को अंधाजों के अंधेरे से निकालकर विज्ञान की रोशनी में लाने की कोशिश कर रहे थे। वो जंग लड़ रहे थे पुरानी सोच के खिलाफ। वे जर्मनी के कठोर रिसर्च मॉडल से प्रभावित थे और अमेरिका में वैसी ही वैज्ञानिक सोच लाना चाहते थे।
अच्छा, मतलब वो कह रहे थे कि सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि कोई बड़ा नाम कह रहा है, सबूत देखो, प्रयोग करो।
बिल्कुल, एग्जैक्टली. जॉन्स हॉपकिंस और रॉकफेलर इंस्टीट्यूट इसी सोच के गढ़ बन रहे थे, लेकिन ये बदलाव अभी आधा अधूरा ही था
कि तभी दरवाजे पर एक अनदेखा दुश्मन आ गया.
हाँ, आपको क्या लगता है अगर ये बदलाव पूरा हो चुका होता तो कहानी कुछ और होती?
ये सोचने वाली बात है. शायद तैयारी बेहतर होती, या कम से कम वो मेडिकल अहंकार वाली बात हावी ना होती. खैर, फिर कहानी उस दुश्मन पर आती है, वायरस पर.
हाँ, बेरी इशारा करते हैं कि ये घातक स्ट्रेन शायद अमेरिका के ही कैंसस राज्य के एक छोटे से ग्रामीण इलाके हैस्कल काउंटी से शुरू हुआ.
हैस्कल काउंटी? मैंने तो सुना था स्पेनिश फ्लू स्पेन से शुरू हुआ था.
नहीं, ये एक मिसनॉमर है. असल में स्पेन युद्ध में न्यूट्रल था, तो वहां प्रेस पर सेंसरशिप कम थी. उन्होंने इस बीमारी के बारे में खुलकर रिपोर्ट किया तो लोगों को लगा कि यह वहीं से शुरू हुई, जबकि ज्यादातर एक्सपर्ट मानते हैं कि शुरुआत अमेरिका या शायद फ्रांस में हुई.
अच्छा, ये तो नई जानकारी है. तो कैंसर से शुरू हुआ?
हाँ, और शुरुआत में शायद ये उतना जानलेवा नहीं था, लेकिन फिर यह पहुंचा अमेरिकी फौजी कैंपों में जैसे कैंप फनस्टन.
और यही तस्वीर में आता है पहला विश्व युद्ध.
बिल्कुल, सोचिए, लाखों युवा सैनिक तंग बैरकों में, ड्रेनों में, समुद्री जहाजों पर. ये वायरस के लिए फैलने और रूप बदलने, मतलब म्यूटेट करने के लिए एकदम सही माहौल था. युद्ध ने इस वायरस को दुनिया भर में घूमने का जैसे सुपर हाईवे दे दिया.
और इसी माहौल में वो चीज हुई जिसे बैरी टिंडर बॉक्स यानी बारूद का ढेर कहते हैं.
टिंडर बॉक्स मतलब
एक ऐसी स्थिति जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी. अमेरिका युद्ध में था. सरकार का पूरा ध्यान युद्ध जीतने और लोगों का जोश बनाए रखने पर था.
हाँ.
एक कमिटी ऑन पब्लिक इन्फॉर्मेशन बनाई गई थी जो जबरदस्त सरकारी प्रचार कर रही थी, प्रोपेगेंडा जिसे कहते हैं.
राइट.
साथ ही सेडिशन एक्ट जैसा कानून था जिसके तहत युद्ध या सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना या लिखना अपराध था. कोई भी बुरी खबर दबा दी जाती थी.
तो ऐसे माहौल में फ्लू की खबर को दबाना आसान हो गया होगा.
हाँ बिल्कुल, इसे दुश्मन की मदद करने वाली या घबराहट फैलाने वाली बात माना गया. स्वास्थ्य अधिकारियों पर दबाव डाला गया कि वे जनता को सच ना बताएं.
बाप रे, सोचिए जरा, एक तरफ वायरस चुपचाप फैल रहा है, लोगों की जाने ले रहा है, और दूसरी तरफ सच बोलने पर पाबंदी है. ये कितना खतरनाक कॉकटेल रहा होगा.
बेहद खतरनाक.
हाँ.
और फिर आई वो दूसरी लहर.
हाँ, असल क्यामत तो वो थी
जो पहले वाली से कई ज्यादा जानलेवा थी. लक्षण भयानक थे. मरीज ऑक्सीजन की कमी से नीले पड़ जाते थे.
हेलियोट्रोप साइनोसिस कहते हैं उसे.
हाँ, हेलियोट्रोप साइनोसिस. फेफड़ों में खून या पानी भर जाता था. और सबसे डरावनी बात, ये सबसे ज्यादा 20 से 40 साल के सेहतमंद नौजवानों को अपना शिकार बना रही थी.
जिनकी इम्यूनिटी सबसे मजबूत होनी चाहिए थी, वही सबसे ज्यादा खतरे में थे. ये बहुत अजीब था.
बहुत. फिलाडेल्फिया शहर का जो किस्सा बैरी बताते हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है.
हाँ, फिलाडेल्फिया की कहानी तो क्लासिक केस स्टडी है.
वहाँ के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर विल्मर क्रूसन
हाँ,
ने डॉक्टरों की चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया. वो जनता से लगातार झूठ बोलते रहे कि ये बस मामूली जुकाम है.
और तो और, उन्होंने युद्ध के लिए पैसा जुटाने वाली एक बहुत बड़ी लिबर्टी लोन परेड को मंजूरी दे दी.
हाँ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए.
डॉक्टरों ने मना किया था.
बिल्कुल.
और नतीजा,
परेड के सिर्फ 72 घंटे के अंदर फिलाडेल्फिया के सारे अस्पताल भर गए.
सिर्फ 72 घंटे?
हाँ, कुछ ही हफ्तों में हजारों लोग मारे गए. शहर में ताबूत कम पड़ गए. मुर्दा घरों में जगह नहीं बची. लोग घरों में मर रहे थे और उनके शव उठाने वाला कोई नहीं था.
शहर लगभग थमसा गया.
ये सीधे सीधे झूठ बोलने और सच छिपाने का नतीजा था. ये सोचकर भी सिहरन होती है कि ऐसा हो सकता है.
लेकिन क्या कहीं कुछ अलग हुआ? कोई ऐसी जगह थी जहां समझदारी से काम लिया गया हो?
हाँ बिल्कुल. बैरीज के ठीक उलट सेंट लुइस शहर का उदाहरण देते हैं.
अच्छा,
सेंट लुइस में क्या अलग था?
वहां के हेल्थ कमिश्नर थे मैक्स स्टार्कलॉफ. उन्होंने राजनीतिक दबाव की परवाह नहीं की. जैसे ही उन्हें खतरे का अंदेशा हुआ, उन्होंने फौरन स्कूल, सिनेमाघर, चर्च और भीड़ जमा होने वाली दूसरी जगहें बंद करवा दी.
मतलब लॉकडाउन जैसा कुछ?
हाँ, एक तरह से अर्ली लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय. लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी.
और इसका असर?
जमीन आसमान का फर्क. सेंट लुइस में मरने वालों की दर फिलाडेल्फिया के मुकाबले बहुत कम रही, शायद 8 गुना कम.
8 गुना?
हाँ, ये साफ दिखाता है कि अगर नेता सच बोलें, वैज्ञानिकों की सुने और सही समय पर कड़े फैसले लें तो जानें बचाई जा सकती हैं. ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी,
ये तो नेतृत्व का सीधा सीधा असर है.
बिल्कुल. और इस पूरी तबाही के बीच वो वैज्ञानिक योद्धा जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था, वो क्या कर रहे थे?
वो बेचारे दिन रात जुटे हुए थे, लेकिन एक तरह से अंधेरे में तीर चला रहे थे.
क्यों? उन्हें समझ नहीं आ रहा था?
उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बीमारी की असली वजह क्या है। उस समय ज्यादातर वैज्ञानिक मानते थे कि ये फीवर बैसिलस नाम के बैक्टीरिया से हो रहा है।
अच्छा, बैक्टीरिया, वायरस नहीं?
हाँ, उस समय वायरस का कॉन्सेप्ट नया था और उन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं थे, तो वे उसी बैक्टीरिया के खिलाफ वैक्सीन बनाने में लगे थे। सोचिए, वो गलत दुश्मन से लड़ रहे थे।
ओह, ये हिस्सा विज्ञान की असलियत दिखाता है ना?
बिल्कुल,
कि विज्ञान कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये गलतियों से, अनिश्चितता से और कभी कभी भयंकर दबाव में काम करने से भरा रास्ता है।
हाँ, वो वैज्ञानिक अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों के सैंपल ले रहे थे, जानवरों पर प्रयोग कर रहे थे, पर जवाब हाथ नहीं आ रहा था।
लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को शक तो हुआ होगा?
हाँ, कुछ को हुआ, जैसे ओसवाल्ड एवरी। उन्हें शक होने लगा था कि ये बैक्टीरिया नहीं, कुछ और है, शायद इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप में भी ना दिखे, एक वायरस। लेकिन इसे साबित करने में कई दशक लग गए।
और इस बीमारी का असर सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। बैरी बताते हैं कि कैसे डर ने समाज के ताने बाने को ही उधेड़ना शुरू कर दिया।
समाज पर क्या असर हुआ?
डर इतना फैला कि लोगों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया। पड़ोसी पड़ोसी से कतराने लगा। कई जगहों पर लोगों ने अपने बीमार रिश्तेदारों तक को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें खुद बीमार पड़ने का डर था।
ओहो, ये तो बहुत दुखद है।
बैरी एक जगह लिखते हैं कि डर एक घुलनशील पदार्थ की तरह था जो समाज के बंधनों को घोल रहा था।
घुलनशील पदार्थ, क्या उपमा है! ये वाकई खौफनाक तस्वीर है। और फिर ये बात भी हैरान करती है कि इतनी बड़ी तबाही को बाद में जैसे भुला ही दिया गया।
हाँ, ये भी एक अजीब बात है। पहले विश्व युद्ध के किस्से तो खूब सुनाए जाते हैं, पर इस महामारी का जिक्र इतिहास की किताबों में कम ही मिलता है।
यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, जो खुद पेरिस शांति वार्ता के दौरान इस फ्लू से बुरी तरह बीमार पड़े थे।
हाँ, और कहा जाता है कि बीमारी ने उनके फैसले लेने की क्षमता पर भी असर डाला था।
बिल्कुल, उन्होंने भी कभी सार्वजनिक तौर पर इसका नाम नहीं लिया। ये सामूहिक विस्मृति, ये कलेक्टिव एमनेशिया क्यों हुई होगी, क्या लगता है?
कहना मुश्किल है। शायद लोग उस भयानक दौर को याद ही नहीं करना चाहते थे, या शायद युद्ध की जीत के जश्न में ये दुख दब गया। वजह जो भी हो, ये अपने आप में एक अजीब पहेली है।
लेकिन शुक्र है कि विज्ञान नहीं भूला।
हाँ, ये अच्छी बात है।
दशकों तक खोज चलती रही और आखिरकार 1990s के दशक में जेफ्रे टॉबिनबर्गर जैसे वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया।
उन्होंने क्या किया?
उन्होंने अलास्का में बर्फ में दफन एक पीड़ित के फेफड़े के ऊतक से और पुराने आर्मी सैंपल से वायरस के जेनेटिक टुकड़े निकाले और 1918 के उस घातक वायरस का पूरा जेनेटिक कोड पता लगा लिया।
अरे वाह, मतलब लगभग 80 साल बाद।
हाँ, ये एक लंबी और हैरतअंगेज वैज्ञानिक जासूसी का नतीजा था।
कमाल है। इस पूरी कहानी से जो सबक निकलते हैं वो आज भी बहुत गहरे हैं, है ना?
बहुत ज्यादा।
पहला और शायद सबसे जोरदार सबक, नेताओं का सच बोलना कितना ज्यादा जरूरी है, खासकर संकट के समय।
बिल्कुल, बैरी साफ दिखाते हैं कि झूठ और जानकारी छिपाने ने कैसे तबाही को बढ़ाया, क्योंकि इससे जनता का व्यवस्था पर से भरोसा ही उठ गया, और जब भरोसा टूटता है तो सब बिखर जाता है।
हाँ, भरोसा ही तो वो गोंद है जो समाज को जोड़े रखता है।
बिल्कुल। दूसरा सबक है विज्ञान की अहमियत, लेकिन सिर्फ कामयाबियों की नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया की।
प्रक्रिया की मतलब?
मतलब ये मानना कि हमें सब कुछ नहीं पता, सवाल पूछते रहना और सबूत मिलने पर अपनी सोच बदलने को तैयार रहना। महामारी ने दिखाया कि पुरानी गलत धारणाओं से चिपके रहने या झूठी निश्चितता का दावा करने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं।
हाँ, वो वैज्ञानिक विनम्रता वाली बात।
तीसरा सबक है हमारे समाज की नाजुकता।
नाजुकता कैसे?
हमें लगता है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारी सप्लाई चेन, हमारे सामाजिक रिश्ते कितने मजबूत हैं, लेकिन ये किताब याद दिलाती है कि एक बड़ा संकट इन सबको कितनी जल्दी चरमरा सकता है। क्या हम ऐसी किसी अगली चुनौती के लिए तैयार हैं, ये सवाल उठता है।
ये तो सोचने पे मजबूर करता है।
और चौथा?
चौथा, खुद विज्ञान की प्रक्रिया का सम्मान। ये कोई बटन दबाने जैसा नहीं है कि तुरंत जवाब मिल जाए।
हाँ, ये धीमी, मुश्किल, गलतियों से भरी हो सकती है, लेकिन सच तक पहुंचने का ये सबसे भरोसेमंद तरीका है। उन वैज्ञानिकों का संघर्ष हमें यही सिखाता है कि हमें प्रक्रिया पर भरोसा रखना होगा, धैर्य रखना होगा।
और ये बातें सिर्फ अमेरिका या उस जमाने के लिए नहीं है। भारत में भी हम देखते हैं कि कैसे स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें फैलती हैं, या कैसे मुश्किल वक्त में सही जानकारी और भरोसे की कमी महसूस होती है। ये सबक हर जगह, हर समय के लिए है।
सही कहा। बैरी की कुछ बातें दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे उनका ये कहना कि 1918 की महामारी सिर्फ एक मेडिकल आपदा नहीं थी, बल्कि ये मेडिकल अहंकार की भी आपदा थी।
हाँ, ये बात मुझे भी बहुत असरदार लगी। मतलब समस्या सिर्फ वायरस में नहीं, सिस्टम के रवैये में भी थी, जो अपनी सीमाएं मानने को तैयार नहीं था।
बिल्कुल, और ये वाली बात भी बहुत सटीक है कि अनिश्चितता के सामने विज्ञान ही सच जानने का सबसे भरोसेमंद तरीका है, लेकिन इसके लिए अनिश्चितता को गले लगाना जरूरी है।
ये आज भी कितना सच है, हम अक्सर तुरंत जवाब चाहते हैं, पर विज्ञान ऐसे काम नहीं करता, उसे समय चाहिए होता है।
हाँ, नेताओं के बारे में उनकी ये टिप्पणी तो चुपती है। नेताओं का राजनीतिक फायदे के लिए, चाहे वो मनोबल बनाए रखना हो या अपनी कुर्सी बचाना, लोगों की जान कुर्बान करने को तैयार होना, वायरस से कहीं ज्यादा घातक साबित हुआ।
कड़वा सच है, पर सच है। फिलाडेल्फिया इसका उदाहरण है।
बिल्कुल, और समाज पर डर के असर के बारे में वो पंक्ति, डर एक घुलनशील पदार्थ था जो समाज के बंधन को घोल रहा था।
ये दिखाता है कि महामारी के जख्म कितने गहरे और अदृश्य हो सकते हैं। फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल और सोशल हेल्थ पर भी असर होता है।
हाँ, तो इन सब बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम अपनी जिंदगी में क्या सीख ले सकते हैं?
पहली चीज तो जाहिर है, भविष्य की महामारियों या स्वास्थ्य संकटों के लिए तैयारी। फिलाडेल्फिया और सेंट लूस की कहानी साफ बताती है कि शुरुआती निर्णायक कदम,
जैसे कि भीड़ कम करना, मास्क पहनना, सही जानकारी देना,
हाँ, ये सब कितना फर्क डाल सकते हैं। प्रोएक्टिव होना जरूरी है, रिएक्टिव नहीं।
दूसरा, संकट के समय नेतृत्व कैसा होना चाहिए? पारदर्शिता, ईमानदारी, जनता से सीधा संवाद और वैज्ञानिकों की सलाह सुनना, ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, ये जानें बचा सकती हैं।
नेताओं में सच बोलने का साहस होना चाहिए, भले ही वो सुनने में अच्छा न लगे। मुश्किल सच बताना झूठे दिलासे देने से बेहतर है।
बिल्कुल। तीसरा, विज्ञान संचार का महत्व। लोगों को ये साफ साफ बताना कि हमें क्या पता है, क्या नहीं पता और आगे क्या योजना है।
झूठे दिलासे या बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों से भरोसा टूटता है। वैज्ञानिकों और अधिकारियों को भी सीखना होगा कि अनिश्चितता को ईमानदारी से कैसे बताएं। ये मुश्किल है, पर जरूरी है।
हाँ, सामाजिक न्याय का पहलू भी नहीं भूलना चाहिए। 1918 में भी महामारी का असर गरीबों और वंचितों पर ज्यादा हुआ था।
सही कहा।
आज भी हमें ये देखना होगा कि स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा के उपाय सब तक बराबर पहुंचे, ताकि संकट का बोझ कुछ लोगों पर ज्यादा ना पड़े। हेल्थ इक्विटी बहुत जरूरी है।
आखिर में, अगर इस पूरी बातचीत से एक चीज लेकर जानी हो, तो मेरे लिए वो होगी सच का सामना करने का साहस।
सच का सामना,
हाँ, नेताओं के लिए भी, समाज के लिए भी और अपने लिए भी। बैरी दिखाते हैं कि सच को दबाना या उससे मुंह मोड़ना अंत में कहीं ज्यादा विनाशकारी होता है। और साथ ही वैज्ञानिक विनम्रता, ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना।
और मेरे लिए शायद सबसे बड़ा सबक है भरोसे की नाजुक लेकिन बेशकीमती अहमियत।
भरोसा,
जब नेता सच बोलते हैं, जब विज्ञान पर यकीन किया जाता है, जब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तभी समाज मुश्किल से मुश्किल दौर से भी गुजर सकता है। ये भरोसा ही असल ताकत है, और ये किताब याद दिलाती है कि इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं कि अगली बार जब कोई बड़ा संकट आएगा, तो क्या हम भरोसे को बचा पाएंगे?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।